ओम शांति, ओम शांति। कहा गया ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। जैसे ही ज्ञान सूर्य शिव बाबा इस धरा पर प्रकट होते हैं तो संसार में जो अज्ञान का अंधकार है उसका नाश होने लगता है। भक्ति में गाते रहे तमसो मां ज्योतिर्गमय, अस्तो मां सतगमय और मृत्यु मां अमृतगमय। हे ईश्वर, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चलो। तो जब शिव बाबा अवतरित होते हैं तो हमारी ये प्रार्थना जो ईश्वर के प्रति की गई है ये साकार हो जाती है कि सचमुच हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, हमें जीवन के सभी सत्यों का ज्ञान होता है और आत्मा के पाठ से हम मृत्यु के भय पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। और बाबा ने हमें बताया कि सतयुग में तो आत्मा आत्मा वैसे तो अजर अमर अविनाशी ही है, लेकिन वहां पर देवताएं अमर हैं क्योंकि वहां मृत्यु का भय बिल्कुल नहीं है और दीर्घायु है। तो शिव बाबा हमें शिक्षाओं से सजाते हैं, वो ज्ञान के सागर हैं, ज्ञान रत्नों से हमारा श्रृंगार करते हैं। शिव बाबा हमें मास्टर ज्ञान का सागर बनाते हैं या मास्टर ज्ञान सूर्य बनाते हैं। कहते हैं कि ईश्वर की गतमत न्यारी है। शिव बाबा जो हमें गति सदगति के लिए मत देते हैं वो दुनिया की मनुष्य आत्माएं जो मत देती हैं मनुष्य जीवन को परिवर्तन करने के लिए उनसे बिल्कुल न्यारी है। और इसीलिए ये ज्ञान शास्त्रों में नहीं है। और बाबा कई बार कहते हैं कि गीता में भी अगर ये ज्ञान है तो सिर्फ आटे में नमक के बराबर। यहां तक कि हमारी जो मनमत है, मनुष्य की मत के साथ साथ हमारी अपनी मत भी होती है जिसे हम परमत मनमत कहते हैं, उससे भी शिव बाबा की श्रीमत न्यारी है और हमें न्यारा बनाने वाली है। न्यारी है इसीलिए हमें न्यारा बनाने वाली है, यानी इस संसार में रहते हुए भी हम कमल फूल समान जीवन जिए उस योग्य हमें बनाती है। जैसे कमल कीचड़ में रहते हुए भी न्यारा रहता है। हाँ, शिव बाबा कोई हमसे घर बार नहीं छुड़ाते, हमें निवृत्ति मार्ग के मार्गधारी नहीं बनाते हैं, लेकिन प्रवृत्ति में रहते हुए भी हम बेहद के वैरागी बन जाते हैं। ये शिव बाबा की शिक्षाओं का परिणाम है कि इस संसार के सब कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए भी हम कैसा महसूस करते हैं अपने आप को, ट्रस्टी हैं, न्यारे हैं। कहा ना, तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो भक्ति में तो गाते थे, आरती गाते थे ना, तो उसमें ये लाइन जरूर आती है, ओम जय जगदीश हरे वाली जो आरती गाते हैं उसमें ये आती है, तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण। लेकिन सिर्फ गाते थे, कैसे भगवान को अर्पण किया जाता है ये समझ नहीं थी, तो गा लिया, फिर तो मेरा का मेरा ही है। ज्ञान में आने के बाद तन मन धन के ट्रस्टी बने, हाँ, कि अभी भी मेरा है, अभी भी बाबा को खुश करने के लिए कह देते हैं बाबा तेरा है और बाकी तो फिर काम के समय तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, है तेरा या मेरा ही है अभी तक भी। तो तन मन धन से हम कैसे ट्रस्टी बने, वो बाबा ने हमें विधि बताई। सर्व समर्पण हम हुए बुद्धि से समर्पण, वो समर्पण बाबा की सेवाओं के लिए जो समर्पण है वो अलग बात है, लेकिन प्रवृत्ति में रहते हुए भी तन मन धन से हम समर्पित हैं, बाबा के सच्चे बच्चे हैं। तो बाबा ने जो शिक्षाएं हमें दी, जो स्मृतियां हमें दिलाई, उन स्मृतियों से जीवन की सारी कमियां, सब बुराइयां दूर करने की शक्ति, विकारों से मुक्त होने की शक्ति आत्मा के अंदर आ गई। एक आत्मा का ज्ञान बाबा ने दिया, कितने देह अभिमान से मुक्त हो गए, कितने प्रकार के देह अभिमान थे हमारे अंदर। सबसे पहले तो उल्टा नशा, सब हम सुनते हैं आत्मा के लेसन में, मैं फलाना हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, हम वो कर सकते हैं, धनवान है, बुद्धिवान है, रूपवान है, बलवान है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, जो भी। तो इस देह अभिमान से मुक्ति के साथ साथ बाबा ने फिर हमें ये भी समझाया कि स्वमान क्या है। मैं आत्मा हूं सिर्फ नहीं, लेकिन लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं ही देव कुल की आत्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। कितनी स्मृतियां दिलाई, वो टाइटल, वो स्वमान हमें बाबा के द्वारा मिले, जो दुनिया के कितने भी विद्वान हैं, कितने भी संसार के हुज हु हैं, कहते हैं दुनिया में एक लिस्ट होती है हुज हु की, इस दुनिया के सबसे वीवीवीवीआईपी जो होते हैं, महान कही जाने वाली आत्माएं होती हैं, उनकी एक लिस्ट होती है, उसमें बाबा के बच्चों का नाम नहीं है, लेकिन भगवान के हु इज हु की लिस्ट में किसका नाम है, और हमारे जैसे टाइटल उनमें से किसी के नहीं हो सकते। आज कितने से कितने बड़े साइंटिस्ट हैं, आत्मा की खोज करते रहते हैं, लेकिन आत्मा का ज्ञान अभी तक उनको मिला नहीं। और यहाँ पर हमारी सभा में एक साधारण घर ग्रस्त में रहने वाली माता कितने अच्छे से आत्मा का ज्ञान समझती भी है और अनुभव भी करती है। करते हैं अनुभव कि नहीं करते हैं? करते हैं। बड़े बड़े महात्माएं हैं, गुरु हैं, भगवान को ढूंढते हैं पहाड़ों में, कंदराओं में जाकर तपस्या करते हैं, ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसे प्राप्त होगा, और हम क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, पालिया, पाना था सो पालिया, परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वो मिल गया तो फिर और क्या चाहिए। तो वो नशा हम बाबा के बच्चों को है कि हमने उसे घर बैठे, और ये भी नहीं कि हमने बाबा को ढूंढा, किसने हमें ढूंढा, बाबा ने हमें ढूंढा। आप में से कोई है जो कहेंगे कि हमने बाबा को ढूंढा, हम भगवान को ढूंढ रहे थे, बड़ी मुश्किल से ढूंढने के बाद बाबा मिला, ऐसे कोई है तो हाथ उठाओ। कोई भी नहीं है, तो सभी को किसने ढूंढा, बाबा ने ढूंढ कर अपना बना लिया, अपना बच्चा बना लिया। तो फिर वो जो शिक्षाएं हमें मिली हैं, बाबा ने हमें हर कर्म के लिए श्रीमत दी है, पूरी दिनचर्या में अमृत वेले से रात तक हमें जीवन में कैसे कर्म करने हैं, क्या हमारी स्मृति होनी चाहिए, क्या हमारी दृष्टि होनी चाहिए, क्या हमारी वृत्ति होनी चाहिए, मिली है। अमृत वेला ही हमारा शुरू होता है, सीधा भगवान से हमारा मिलन होता है। ये कितना बड़ा भाग्य है। दुनिया में भी लोग कहते हैं सुबह सुबह किसका मुंह देखा था, चाहे दिन अच्छा होता है या बुरा, तो कई बार कहने में आता है कि किसका मुंह देखा था जो इतना अच्छा दिन हुआ, या किसका मुंह देखा था जो इतना बुरा दिन हुआ। और हम किसका मुंह देखते हैं, सुबह सुबह उठते ही शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करते हैं, शिव बाबा से हम मिलन मनाते हैं। तो अमृत वेला यदि हम विधि पूर्वक करते हैं, बाबा कहते हैं सुबह सुबह अपने को ऐसे समझो कि मैं परम धाम से सृष्टि पर परमात्मा का कार्य करने अर्थ अवतरित हुई आत्मा हूं। सवेरे सवेरे अपने मन को परमात्मा स्नेह से भरपूर कर लो, जो आज भी मुरली का वरदान था, सुना ना आज का वरदान। तो अगर सुबह सुबह मन को परमात्मा स्नेह से भरपूर कर लिया, तो फिर सारा दिन किसी भी आत्मा का स्नेह आकर्षित नहीं करेगा। सर्व बाबा के भंडारे बच्चों के लिए अमृत वेले खुले होते हैं। जो शक्ति हम लेना चाहें, जो गुण का अनुभव करना चाहें, जो प्राप्तियां हम करना चाहें, भोलानाथ बाबा, बाबा कहता है कि बाबा भोलानाथ है अपने बच्चों के लिए, सहज प्राप्ति कराने वाला है, लेकिन विशेष बच्चों के लिए समय है अमृत वेला। लेकिन अमृत वेले ही माया भी चक्कर लगाती है, या तो उठ नहीं पाते हैं, और अगर उठ भी जाते हैं कई बार, तो फिर नेमिनाथ बन करके योग करते हैं। नेमिनाथ बन के योग करना माना बैठे तो हैं बाबा की याद में, लेकिन परम धाम की शांति का अनुभव करने की बजाय नींद की शांति का अनुभव कर रहे हैं। बैठे बैठे भी कई बार बाबा कहते हैं मुरलियों में कि जो बच्चों की ट्यून है वो बाबा तक पहुंचती है, वहां परम धाम में पहुंचती है। तो जो बाबा की श्रीमत है अमृत वेले के प्रति, उसी रीति से अगर हम पालन करते हैं, उस विधि से, तो हमें सिद्धि मिलती है। फिर सारा दिन आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको लगेगा बाबा के वरदान मुझे चला रहे हैं, भगवान की पालना में हम पल रहे हैं, बहुत सहज पुरुषार्थ अनुभव होगा। मुरली दूसरी बाबा की शिक्षा है हम बच्चों के प्रति, क्योंकि बाबा की पढ़ाई ही, वो शिक्षक बनकर आए हैं, तो बाबा की पढ़ाई ही हमारे लिए मुरली के द्वारा होती है, और स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं, और इतनी दूर परम धाम से पढ़ाने के लिए हम बच्चों को आए हैं, और एक दिन भी मुरली नहीं चलती, ऐसा होता है? बाबा कहते हैं कई बार मैं कोई बहाना नहीं देता हूं कि आज ये हो गया, आज इसीलिए मुरली नहीं चलाई। लेकिन हम पढ़ाई के प्रति कितने रेगुलर हैं, कितने पंचुअल हैं, और कितने उसे धारण करने वाले हैं। एक स्टूडेंट की विशेषता क्या होती है, एक स्टूडेंट से क्या अपेक्षा की जाती है कि वो पढ़ाई के प्रति कैसे होना चाहिए, बिल्कुल रेगुलर और पंचुअल होना चाहिए। तो क्या हम बाबा की मुरली उस विधि पूर्वक उस महत्व से सुनते हैं, या यहाँ भी सिर्फ नियम निभाते हैं कि ब्राह्मण जीवन का नियम है मुरली सुन लेना। तो दो तरह की पढ़ाई है, एक है थ्योरिटिकल और एक है प्रैक्टिकल। तो थ्योरी तो हमने 7 दिन के कोर्स में जान लिया, सारी मुरली का जो सार है वो 7 दिन के कोर्स में हम सुनते हैं, स्वयं का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, समय का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, नियमों का ज्ञान, ब्राह्मण जीवन के जो नियम है, मर्यादाएं हैं, वो सब तो हम सुन ही लेते हैं। लेकिन जो मुरली हमारे जीवन में स्वरूप में आनी चाहिए, क्या वो हमारे व्यवहारिक जीवन में है? हाँ, एक जो शिक्षा है बाबा की, जैसे कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच के बोलो, तो सारे दिन की दिनचर्या में क्या हमारे बोल ऐसे होते हैं? कम बोलो माना अंतर्मुखी रहना है, ज्यादा व्यर्थ की बोलचाल में, इधर उधर के समाचारों के लेन देन में, तेरी मेरी की बातों में हमें अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है, क्योंकि ये ज्ञान का जो जीवन है हमारा बहुत अनमोल है और बहुत थोड़ा समय हमें मिला है संगम युग का, अपनी आत्मा को सर्वगुण संपन्न बनाने का। ये पढ़ाई हमें मनुष्य से देवता बनाने वाली है ना? इतनी ऊंची पढ़ाई है, और जो भी ऊंची पढ़ाई पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं वो अपना समय व्यर्थ गंवाते हैं। देखा कभी आईएएस और आईसीएस की, आईपीएस की पढ़ाई करने वाले, डॉक्टर इंजीनियर बनने वाले स्टूडेंट्स को देखा कभी टाइम बर्बाद करते हुए? उनका पूरा का पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर होता है। तो देवता बनना तो उससे भी ऊंच पद की प्राप्ति है, और एक जन्म के लिए नहीं लेकिन जन्म जन्मांतर के लिए। 21 जन्मों की तो गारंटी है बाबा की, और उसके आगे भी इस पढ़ाई की प्रारब्ध चलती है। इसलिए कहते हैं नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, जो पढ़ाई है वो ही कमाई का आधार है। तो हम जो पद्मा पदम पति बन रहे हैं, पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हैं, उसका आधार क्या है? ये हमारी पढ़ाई है। फिर कई कहते हैं भाई बहने कि ठीक है ना, अब रोज मुरली में तो बाबा एक ही बात कहता है, अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो, मालूम तो है हाँ। या बाबा सृष्टि चक्र की बात कहता है, सतयुग त्रेता युग द्वापर युग कलयुग सुदर्शन चक्रधारी बनो। हाँ, कौन सी मुरली ऐसी होती है जिसमें ये पॉइंट नहीं होते? तो क्यों बाबा बार बार हमें कहते हैं, क्यों बाबा बार बार कहते हैं? क्योंकि 63 जन्मों के संस्कार हमारे विस्मृति के हैं, और रोज सुनते हैं हम फिर भी भूल जाते हैं। कितना समय आत्मा याद रहती है, कितना समय बाबा याद रहता है? हाँ, याद रहते हैं सारा दिन। देह भान क्या हमारा समाप्त हो गया है? मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। जैसे शरीर भान की स्मृति निरंतर रहती है ना, शरीर भान भुलाए नहीं भूलता है, ऐसे ही क्या आत्मिक भान मेरा निरंतर हो गया कि मैं आत्मा हूँ? तो हम सिर्फ जब मुरली सुन रहे हैं, जब योग कर रहे हैं, थोड़ा समय आत्मिक स्मृति में रहते हैं, फिर सारा दिन कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं या फिर बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं। इसीलिए बाबा को हमें रोज याद दिलाना पड़ता है। दुनिया में भी जो लोग पाठ करते हैं, मानो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, मानो उनका नियम होता है कि रोज उनको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, तो वो क्या करते हैं? वही हनुमान चालीसा का पाठ होता है ना, या हनुमान चालीसा बदल जाता है रोज? हाँ, या कोई स्तुति करते हैं देवी की तो वही स्तुति, या कोई मंत्र जाप करते हैं तो क्या मंत्र बदल जाते हैं या वही मंत्र जाप करते हैं? हाँ, वही करते हैं। तो हमारी बाबा की मुरली में तो फिर भी हर दिन कोई ना कोई ऐसी नई पॉइंट जरूर होती है जो हमें लगती है कि ये तो हमने आज पहली बार सुना। तो बाबा ज्ञान के नए नए राज भी खोलते हैं और बाकी के हमें स्मृति स्वरूप बनाते हैं, क्योंकि अभी तक हम उसके स्वरूप नहीं बने। हमने बड़ी दादी को देखा, दादी प्रकाश बनी थी, दिन में 4 बार मुरली पढ़ते थे। हालांकि वो मुरली सुनाते थे लेकिन रात को सोने से पहले मुरली पढ़कर सोना उनका पक्का नियम था। कुछ भी हो जाए, किसी कार्यक्रम में कितनी भी देर हो गई, 11 भी बज गए, तो भी वो सोने से पहले मुरली जरूर पढ़ेंगे, और मुरली पढ़ने के बाद 1 मिनट में सो जाएंगे। फिर दारी जी अमृत वेले के बाद भी मुरली पढ़ते थे और शाम को जब रेस्ट करके उठते थे उसके बाद भी दादी मुरली पढ़ते थे। तो ऐसे चार बार का नियम हमने, जब तक दादी इतने स्वस्थ थे कि खुद पढ़ सकें, हमने देखा दादी को। तो कई बार मैं भी सोचती थी कि दादी तो ओम मंडली के टाइम से हैं और ये सब मुरली दादी की कितनी बार सुनी हुई है, कितनी बार रिवाइज हुई है ये मुरली, और फिर भी दादी इतनी बार मुरली पढ़ते हैं। माना दादी की पढ़ाई सिर्फ एक मुरली ही थी और इसीलिए हम देखते थे कि दादी बिल्कुल बाबा की शिक्षाओं का स्वरूप थे, बाप समान थे। क्योंकि अगर हमने एक बार मुरली सुनी तो हमें कितना याद रहता है, कितना याद रहता है। कोई पॉइंट पूछेंगे तो कहेंगे हम मुरली तो बहुत अच्छी थी, मुश्किल से कोई एक बात याद आएगी। और यदि हमने दो बार मुरली पढ़ी तो थोड़ा सा 25% कुछ बातें मुरली की याद आएंगी। तीन बार मुरली पढ़ी तो दो तिहाई मुरली हमें याद आ जाएगी और चार बार पढ़ी तो लगभग पूरी मुरली हमें याद होगी। जब वो मुझे याद है यानी मेरी स्मृति में है तभी वो कर्म में आ सकती है। जो बात मुझे याद नहीं वो मेरे कर्म में आ सकती है, नहीं आ सकती है ना। और इसीलिए हम मुरली सुनते हैं तो एक घंटा तो हमारी बैटरी चार्ज होती है। यहाँ से जाते हैं, मानो किसी ने कुछ कह भी दिया तो हम कोई रिएक्ट नहीं करेंगे, फिर भी हम प्यार से बात करेंगे, कोई फीलिंग में नहीं आएंगे, अपना मूड खराब नहीं करेंगे, क्योंकि वो पावर है आत्मा के अंदर, अभी बैटरी चार्ज है, हम मुरली सुन के आए हैं। लेकिन थोड़े समय के बाद जैसे जैसे विस्मृति में आते हैं फिर से हमारे देह अभिमान के पुराने संस्कार जागृत होने लगते हैं और फिर हम वहीं के वहीं, फिर सोचते हैं अमृत वेले योग भी किया था, मुरली भी सुनी थी, फिर भी। तो बाबा की शिक्षाओं का स्वरूप नहीं रहता है। तो इसीलिए विचार सागर मंथन करने के लिए बाबा हमें बार बार कहते हैं कि वो हमें याद रहे। तो चाहे हम पॉइंट्स को हम नोट करें, या चाहे हम, आज तो बहुत साधन है जिनके द्वारा हम मुरली रिवाइज कर सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि उन्हीं को हम अपना आधार बना लें। सेंटर के वातावरण में जो हम मुरली सुनते हैं, सेंटर पे जाकर के जो एकाग्रता होती है हमारी, वो घर पर नहीं हो सकती। आप पीस ऑफ माइंड टीवी से सुन रहे हैं या मोबाइल पर सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, होती है उतनी एकाग्रता। अनुभवी होंगे किसी कारण से अगर सेंटर पर नहीं जा पाते तो घर पर मुरली मिस ना हो तो मुरली पढ़ते हैं। मुरली हमारे लिए ज्ञान संजीवनी की तरह है। अगर मुरली नहीं सुनी तो कैसा लगता है, कैसा लगता है, आत्मा को जैसे भोजन ही नहीं मिला। हमारी सारे दिन की जो समस्याएं आती हैं, हम कलयुगी दुनिया में रहते हैं, उन्हीं कलयुगी दुनिया की परिस्थितियों का सामना हमें भी करना होता है, तो मुरली सुनी तो वो ताकत आत्मा में रहती है, बाबा का साथ अनुभव होता है। कई बार बाबा मुरलियों में कहते हैं कि ये मुरली बाबा का बच्चों के लिए प्रेम पत्र है, और ऐसा कोई भी नहीं है आज की दुनिया में जो चार पेज का प्रेम पत्र किसी को लिखता हो। आज 14 फरवरी है ना, आज के दिन को वैलेंटाइन डे दुनिया में मनाया जाता है, तो वैलेंटाइन डे को प्रेमियों का दिन कहा जाता है। तो देखो भगवान के हम सब आशिक हैं, हमारा माशुक कौन है, माशुक कौन है, एक बाबा है और उसके हम सब आशिक बैठे हैं। और हमारा माशुक ऐसा है जो हर दिन हमको चार पेज का प्रेम पत्र लिखता है। तो देखिए, और अगर हमने उसको महत्व नहीं दिया तो उसके प्रेम पाने से हम वंचित रह जाते हैं। भगवान का प्यार हमें किसके द्वारा अनुभव होता है? मुरली के द्वारा ही अनुभव होता है ना बाबा का प्यार। तो हमारे जीवन में पढ़ाई का इतना महत्व है, ब्राह्मण जीवन का आधार, जो वैसे हम कहते हैं फाउंडेशन पवित्रता है, लेकिन वास्तव में पवित्रता का भी फाउंडेशन क्या है? बाबा की पढ़ाई, जो मुरली है हम बच्चों के लिए। अगर आपने एक हफ्ता मुरली नहीं सुनी और माया ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुरंत माया का प्रभाव आपके जीवन में दिखाई देने लगेगा। और कुछ कारण से आपने कुछ महीनों तक मुरली मिस कर दी, तो फिर वो बाबा नहीं कहते आश्चर्यवत सुनंती कथंती, और कब हमारा ब्राह्मण जीवन चला जाएगा वो हमें भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि माया तो बिल्कुल तैयार बैठी है कि मेरे ये ग्राहक भगवान के पास चले गए, अगर मौका मिले तो तुरंत मैं इन्हें वापस अपने पास ले आऊं। फिर बाबा ने हर कर्मेंद्रिय को कैसे चलाना है ये भी शिक्षा हमें दी है। अब वैसे तो बाबा की व्यवहारिक शिक्षाएं हमारे जीवन के लिए बहुत हैं, सुबह से लेकर रात्रि तक जैसे का कर्म योगी बनकर हमें कर्म करना है, ब्रह्मा भोजन ही खाना है, भगवान की याद में बना हुआ शिव बाबा को अर्पण करके जो भोजन हम खाते हैं ब्रह्मा भोजन है, साधारण रीति से हमें भोजन नहीं करना है। और फिर रात्रि को चार्ट दे करके बाबा को सारे दिन का हमें चार्ट देना है, अपने कर्मों का पोता मेल देना है, और उसके बाद बाबा की याद में बाबा की गोद में सो जाना है। और कर्मेंद्रियों के लिए, आंखों के लिए बाबा कहते हैं सदा हमारी सिविल आई हो, यानी आत्मा भाई भाई की दृष्टि हो। ब्राह्मणों की दृष्टि वृत्ति शुद्ध दृष्टि वृत्ति है। और कानों के लिए सदा कान से हमें बाबा के ज्ञान रत्नों का ही श्रवण करना है। पर चिंतन पर दर्शन की बातें न सुनते हुए भी, अगर कभी वैसे तो सुने ही नहीं, पर अगर कभी सुनने में भी आती है तो सुनते हुए भी हमें उसे सुनना नहीं है। मुख से जो हमारे वचन निकले वो सदा ही मधुर वचन हो, सदा सबको उमंग उत्साह में लाने वाले हो, सदा सबको सुख देने वाले हो, सबके अंदर हिम्मत पैदा करने वाले हो, उन्हें बाबा के समीप लाने वाले हो। तो ये शिक्षाओं का पालन करना हम बाबा के बच्चों का कर्तव्य है। लेकिन जब क्षमा की बात आती है तो हम देखते हैं कई बार जब दूसरे उन शिक्षाओं को पालन नहीं कर रहे, हम भी नहीं करते कई बार, तो फिर क्रोध आता है, ये ऐसा करता है, ये ऐसा क्यों करता है, या तो उसके प्रति नफरत का भाव या फिर क्रोध का भाव आता है, हमने किसी को कोई बात कही उसने नहीं मानी, या हमने किसी को कुछ समझाया उसने फिर भी गलती की, तो फिर हम गुस्सा करते हैं उनके ऊपर। तो यहाँ पर जैसे शिव बाबा क्षमा के सागर हैं, हम बच्चों की गलतियों को कभी चित पर नहीं रखते। कितनी भूलें हम करते हैं, बाबा ने कितनी श्रीमत दी है हमको, क्या हम सब श्रीमत का पालन कर पाते हैं? हर रोज कोई ना कोई भूलें हमारे से होती हैं और फिर भी बाबा का प्यार हमें मिलता है, इसका मतलब हमारी भूलों को बाबा सदा ही माफ कर देते हैं। भगवान के लिए भक्ति में भी कहते हैं प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो, कि मैं तो मैं भूलों का सागर हूं और आप क्षमा के सागर हो। हम भगवान से ये अपेक्षा रखते हैं और सदा ही हम महसूस करते हैं कि हम जब भी बाबा से क्षमा की बात करते हैं, मेरे से गलती हुई, जैसे ही हमें रियलाइज हुआ हम बाबा से सॉरी बोलते हैं, माफी मांगते हैं, बाबा हमें माफ कर देते हैं। बाबा ने कहा सच सुनाया तो आधा वैसे ही माफ हो जाता है और बाकी के लिए बाबा हमें शक्ति भी दे देते हैं। लेकिन हम भी दूसरों की गलतियों को वैसे ही माफ कर पाए, क्योंकि हम भी बाबा के बच्चे, बाबा के सहयोगी हैं, बाप समान बनने वाले हैं, तो औरों के भी अवगुण हमें चित पर नहीं रखने हैं। हम देखते हैं जो भी महान आत्माएं हुई हैं उनकी विशेषता रही संसार में, भगवान के साथ साथ वो महान आत्माएं भी इसी गुण के गुणधारी थे और इसीलिए वो समाज में इतने बड़े बड़े परिवर्तन ला सके, क्रांति वो कर सके इस दुनिया के अंदर, तभी वो धर्म की भी स्थापना कर पाए। जैसे ईसा मसीह को लोगों ने सूली पर चढ़ाया तो उन्होंने क्या कहा, हे पिता तू इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो भी सूली पर चढ़ा रहे हैं तो भी क्षमा भाव था उनके मन के अंदर, और इसीलिए इस गुण की महानता से ही आज कृष्ण धर्म में उन्हें भगवान का दर्जा है। आज भी उनकी पूजा होती है, उनको प्रे करते हैं सब, क्षमा का गुण इतना महान बनाता है व्यक्ति को। और कितना बड़ा आज विश्व का हिस्सा कृष्ण धर्म का अनुयायी है, तो बाबा उसको कहते हैं सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखना, सहन शक्ति धारण करना, ये क्षमा भाव में अंतर्निहित है। हम क्षमा भाव तभी रख सकते हैं जब हम दूसरों की गलतियों को सहन करते हैं और फिर भी उनके प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखते हैं, और इससे हमारा ही पहले भला होता है, हमारा ही पहले चित्त निर्मल हो जाता है। जब हम जैसे ही किसी दूसरे को क्षमा करते हैं सबसे पहले हमारा मन शांत होता है, हमारा मन हम शुद्ध महसूस करते हैं उस आत्मा के प्रति। आज साइंस कहती है कि जो बीमारियां होती हैं साइकोसोमैटिक बीमारियां, वो मन के नकारात्मक भावों के कारण होती हैं, कि यदि हम किसी के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष रखते हैं, नफरत रखते हैं या अन्य ऐसी प्रकार की नकारात्मक भावनाएं, बदले की भावना, भय, निराशा, तो 70% बीमारियां उसके कारण होती हैं। और लेकिन यदि हम क्षमा कर देते हैं तो हमारे मन के ये भाव समाप्त हो जाते हैं, तो उससे हमें दोहरा लाभ होता है। एक तो बाबा के साथ हमारा योग नहीं टूटता, क्योंकि मन में अगर नेगेटिव फीलिंग्स हैं तो वो नेगेटिव फीलिंग्स हमें बाबा तक पहुंचने नहीं देती। आप याद करने लगते हैं बाबा को, और याद कौन आता है, याद कौन आता है, जिसके प्रति मन में ऐसा कोई भाव है कि ये ऐसा करता है, ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा बोलता है, ये ऐसा चलता है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, उसको वैसे नहीं करना चाहिए, यानी उनकी गलतियां ही मेरे मन में चलती रहती हैं, जिनके साथ हमारा हिसाब किताब है। आत्माओं के साथ हमारा हिसाब किताब तो है, संस्कारों का टकराव उसके कारण उन आत्माओं से हमारा हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम क्षमा भाव रखते हैं तब हमारा मन वो साफ हो जाता है। और दूसरी बात कि ये भाव समाप्त होते ही जो असर हमारे शरीर पर आ रहा है, अगर लंबे समय तक वो भाव रह गया तो वो बीमारी का जो रूप होता है वो भी बीमारी भी ठीक हो जाती है। कई बार ऐसे कहते हैं कि कैंसर जैसी बीमारी भी उसका कारण भी लंबे समय तक किसी के प्रति यदि मन में बदले की भावना है, या कई बार हम अपने आप को भी माफ नहीं कर पाते, हमने गलतियां की, हमसे भी गलतियां हो जाती हैं, बाबा की श्रीमत का उल्लंघन किया तो मुझे पता है कि मेरे से गलती हो गई, फिर हम अपने आप को माफ नहीं कर पाते, क्यों मैंने ऐसी गलती कर दी, लंबे पश्चाताप में चले जाते हैं अपने प्रति, उसका भी असर आता है। तो कहते हैं अपने आप को भी माफ कर दो, दूसरों को माफ करने के साथ साथ किसे माफ करना है, खुद को भी, खुद को भी हमें माफ करना है। और जब हम माफी का या क्षमा का गुण अपने जीवन में प्रयोग करते हैं तो वो ही दूसरों के लिए शिक्षा हो जाती है, हमें अलग से उनको शिक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ती। सुकरात के जीवन की एक घटना है, महात्मा सुकरात हुए, उनकी पत्नी बहुत क्रोधी स्वभाव की थी, तो वो अपने शिष्यों के साथ एक बार बैठे थे अपने ही घर में और उनसे चर्चा कर रहे थे, और पत्नी को अच्छा नहीं लग रहा था तो गुस्सा आ गया उसे, जैसा स्वभाव था उसका, और उसने वहां से ही उनके लिए अपशब्द बोलने शुरू किए। धीरे धीरे उसका गुस्सा और बढ़ता गया, उनकी कोई बहुत जरूरी चर्चा थी तो वो उन्होंने जारी रखी, तो जब उसका गुस्सा इतना बढ़ गया कि वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाई, तो देखा कि घर के सामने थोड़ा कीचड़ फैला हुआ था, वो कीचड़ उसने एक बर्तन में लिया और सुकरात के शिष्यों के सामने ही वो कीचड़ उनके सिर पर डाल दिया। तो सुकरात हंसने लगे, उन्होंने कहा आज तक तो हम सुनते थे कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, आज देखा जो गरजते हैं वो बरसते भी हैं। तो एक शिष्य को बहुत गुस्सा आया, उसने कहा कि ये स्त्री तो चुड़ैल है, ये आपके लायक है नहीं, आपने कैसे इसे रखा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मेरे ही लायक है, क्योंकि ये मुझे ठोक ठोक कर देखती रहती है कि सचमुच जो मैं कहता हूँ उतनी सहन शक्ति मेरे अंदर है या नहीं, वो गुण मेरे अंदर आए हैं कि नहीं, तो इससे मेरी जांच होती रहती है समय प्रति समय। तो वो सुनकर के वो उनकी पत्नी इतनी शर्मिंदा हुई, और उसी दिन से उसने निश्चय कर लिया कि आज के बाद मुझे कभी भी ऐसा व्यवहार अपने पति के साथ नहीं करना, और सचमुच उसके बाद उसका परिवर्तन हो गया। तो देखो, उन्होंने उसको शिक्षा नहीं दी, सिर्फ उसको क्षमा किया, उनकी गलतियों को नजरअंदाज कर दिया कि वो क्या गलतियां करती है, और अपने आप उसमें वो परिवर्तन आया। तो जितने भी महान पुरुष हुए, उन्होंने जो समाज में परिवर्तन लाए वो इसी आधार पर लाए। नहीं तो कई बार हम क्या करते हैं, हम बार 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 खुद भी उसको याद करते हैं और दूसरे को भी वो याद दिलाते हैं, तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करते हो। बाबा कहते हैं नहीं, माफ कर दो, जैसे ही माफ करेंगे वो माफी ही उसके लिए रियलाइजेशन हो जाएगा, महसूसता की शक्ति वो उसके अंदर नहीं। हर एक को पता होता है कि मैंने क्या गलती की, मानो झूठ बोला किसी ने, बच्चे होते हैं मानो झूठ बोलते हैं, या कोई भी जिस पर आप बहुत विश्वास करते हैं वो आपसे झूठ बोलता है, कोई भी कारण बन जाता है वो व्यक्ति झूठ बोलता है और हमें पता चल जाता है कि इसने झूठ बोला। तो किसी का झूठ सुनकर के क्रोध आता है कि इसने झूठ क्यों बोला। तो बाबा ने एक मुरली में कहा था कि उसने झूठ बोला वो तो गलत किया, ठीक है, लेकिन आपने गुस्सा किया, क्या वो सही किया, क्या बोलेंगे, वो भी तो फिर गलत हुआ। तो एक गलत दूसरे गलत को कैसे सही कर सकता है। एक बच्चा है, कोई गलती करता है तो माँ से डरता है कि माँ को अगर पता चला तो मार पड़ेगी या डांट पड़ेगी, तो वो मार खाने के डर से झूठ बोल देता है सीधा माँ से कि मैंने ये काम नहीं किया। और वही बच्चा अपने पिता को जाकर के या अपने दादा दादी घर में अगर हैं तो उनको जाकर के सच बता देता है कान में कि पापा मैंने ऐसे किया, लेकिन आप मम्मी को मत बताना, क्योंकि उसको पता है कि पापा को अगर मैंने सच बोला तो पापा कहेंगे कोई बात नहीं बेटा, आगे से ध्यान रखना, कुछ कहेंगे नहीं, नाराज नहीं होंगे, लेकिन माँ तो मरने वाली है, तो कौन निमित्त बना उसको झूठ बुलवाने के, कौन निमित्त बना, माँ निमित्त बनी ना। तो कहीं ना कहीं कई बार हम ही कारण बन जाते हैं जो गलतियां सामने वाले कर रहे होते हैं, और इसीलिए उनकी गलतियों को हमें छोड़ देना होता है। कई बार बाबा कहते हैं जब पतंग उड़ाते हैं ना, तो पतंग उड़ाने में कई बार डोरी को ढील देनी होती है और कई बार डोरी को टाइट भी करना होता है। तो फिर हमें ये देखना है कि कहाँ उस व्यक्ति को शिक्षा देनी है और कहाँ उसे छोड़ देना है। तो कहाँ छोड़ देने से परिवर्तन आता है और कहाँ थोड़ा सा अगर जरूरत है तो हमें उसे श्रीमत की स्मृति भी दिलानी पड़ती है। तो बाबा ऐसे कहते हैं, जो हमारी निमित्त बहने हैं, निमित्त दीदियां हैं, वो हमें बाबा की शिक्षाएं यानी बाबा की श्रीमत की स्मृति दिलाती हैं। वो कोई खुद की श्रीमत नहीं देती हैं। समझो उन्होंने आपकी कोई गलती ध्यान पर दी भी सही। कभी होता है कि हम चल रहे हैं ज्ञान मार्ग में, लेकिन हमारे कुछ कर्म ऐसे हैं जो बाबा की श्रीमत प्रमाण नहीं है, और बहन के नोटिस पर आता है तो वो आपको वो बात ध्यान पर देती हैं। तो वो भी जो ध्यान पर दे रही हैं, वो बाबा की श्रीमत ही हमें ध्यान पर दे रही है, वो कोई उसकी अपनी बात नहीं है। तो कई बार वो ध्यान पर देनी भी पड़ती है, हाँ, नहीं तो हम वो भूले दोहराते रहते हैं, और कई बार हमें बिल्कुल भी उस बात पर ध्यान नहीं भी देना होता है, तो वो देखना होता है। कई बार ऐसा होता है कोई हमारी निंदा करता है, कमी निकालता है हमारे, तो हमें कभी पसंद नहीं आता, क्योंकि हर इंसान को अपनी तारीफ सुनना ही पसंद होता है। लेकिन ज्ञान में कहते हैं, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोई। निंदा करने वाला हमारा मित्र हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि हम सर्वगुण संपन्न बनने के पुरुषार्थी हैं, हम देवता बनने वाली आत्माएं हैं, हम अपनी कमियां दूर करना ही चाहते हैं। और अगर कोई मेरी कमी बता रहा है तो हमें तो उसको थैंक्स बोलना चाहिए कि आपने मेरी ये कमी ध्यान पर दी, क्योंकि इंसान को अपनी कमी कम दिखाई देती, दूसरों की ज्यादा दिखाई देती। इसलिए बाबा कहते हैं कि दूर की नजर तेज होती है ब्राह्मणों की, नजदीक की नजर कमजोर हो जाती है। तो दूसरों की कमियां तो हम देख लेते हैं, लेकिन अपनी कमियां हम कई बार नहीं देख पाते। और अगर दूसरे ने मेरे ध्यान पर दिया और हमने देखा सचमुच ये कमी मेरे अंदर है, तो हम उसे दूर करने का पुरुषार्थ करेंगे। और अगर नहीं है तो सुनते हुए भी नहीं सुनना है, उस पर ध्यान नहीं देना है। जब है ही नहीं तो उसको क्यों मन पर लेना है। एक बार ऐसे ही एक बहन मम्मा के पास आई। बाबा के टाइम में कचहरी होती थी भाई बहनों की। कचहरी का मतलब सारे दिन के बाद रात को सब भाई बहने यज्ञ के जो थे वो साथ में बैठते थे। फिर दिन भर में कुछ भी आपस में ऊंच नीच हुई, क्योंकि इतना बड़ा संगठन है तो कुछ हो ही जाता है, तो सब मम्मा के साथ वो लेन देन होती थी। तो एक बहन ने कहा कि मम्मा आज इस बहन ने मुझे ऐसा ऐसा बोला, मुझे बहुत बुरा लगा। तो मम्मा ने कहा अच्छा ठीक है। उसने कहा लेकिन तुम्हें बुरा लगा पर कहां बुरा लगा? तो उसने सोचना शुरू किया। उसने कहा कि मम्मा मन में बुरा लगा ना। तो मम्मा ने कहा अच्छा मन में वो बात गई कहां से? तो कहा मम्मा वो बात मन में गई कानों से। तो फिर मम्मा ने उसे कहा अच्छा जब कोई तूफान आता है तो हम क्या करते हैं? तूफान आता है तो हम अपने खिड़की दरवाजे बंद करते हैं ना, ताकि तूफान से जो उड़ने वाली धूल मिट्टी है वो मेरे घर में ना आ जाए। तो जब तुम्हें पता था कि वो बहन ऐसा बोल रही है तो तुमने अपने कान बंद क्यों नहीं कर लिए? मतलब कहने का क्या कि तुमने वो बातें अपने मन पर जाने ही क्यों दी, अपने मन पर ली ही क्यों? तो फिर ऐसी बातें हमें मन पर लेनी ही नहीं है। अगर कोई ऐसी बातें करता है तभी हम उसको माफ कर पाएंगे। तो क्षमा करना बाबा के समान ही हम बाबा के बच्चों का स्वभाव होना चाहिए। और क्षमा करने के लिए कोई विधि नहीं है, सिर्फ मन ही मन में जब हम योग लगाते हैं, कोई भी आत्मा के प्रति अगर ऐसा वैसा भाव मेरे मन में आ रहा है, आप उसी समय अपने मन में कहो कि ये जो भी है जैसे है, जैसे बाबा हमें माफ करता है ऐसे मैंने भी इसे माफ कर दिया। आज से मैं इसकी कोई भी बात अपने मन पर नहीं रखूंगा या रखूंगी। और अगर फिर भी आती है, फिर भी वही बात दोहरानी है, फिर भी हमें अपने मन को वही समझाना है कि मैंने इसको पूरी तरह से अपने दिल से माफ कर दिया है। गलतियां सबसे होती हैं, वो गलती करते हैं, हम भी गलती करते हैं, कभी हम करते हैं कभी वो करते हैं, तो हमें किसी की भी गलती को अपने मन पर नहीं रखना है। और आप देखेंगे कि दो तीन बार चार बार ऐसे प्रैक्टिस करने के बाद हम बिल्कुल उससे मुक्त हो जाएंगे। फिर रहम का भाव, बाबा हमें कहते हैं कि बाबा हम बच्चों के प्रति रहम दिल हैं, भगवान को मर्सीफुल कहा, ओ गॉड मर्सी ऑन मी, है ना। खासकर कृष्ण धर्म के लोग इस तरह से भगवान को याद करते हैं, मर्सीफुल गॉड की तरह उसे याद करते हैं। तो भगवान दुखी और बेसहारा आत्माएं या जो भी अशांत आत्माएं हैं उनके लिए वो रहम करते हैं। आज दुनिया में बहुत समस्याएं हैं लोगों को, तो भगवान को जाकर पुकारते हैं, चाहे वो किसी भी माध्यम से पुकारते हैं, चाहे वो गुरुओं के द्वारा, चाहे वो अपने इष्ट देव के द्वारा, चाहे वो महात्माओं के द्वारा। माध्यम तो कोई चुनते हैं वो, लेकिन पुकार किसको रहे हैं, हे भगवान हम पर रहम करो, हम पर दया करो, हमारे ये कष्ट दूर करो, हमारे ये दुख दूर करो, कहते तो हैं भगवान को। और शिव बाबा किसी के द्वारा किसी को भी निमित्त बनाकर जरूर उन आत्माओं को उनकी भावना का फल देते हैं। देते हैं नहीं देते हैं? आज भी भक्ति में भावना का फल तो भक्तों को मिलता ही है। हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा को याद करते हैं, कई बार हम भी ज्ञानी भक्त बन जाते हैं। बनते नहीं बनते, हम भी भगवान से यही रहम मांगना शुरू कर देते हैं, बाबा ये विघन ये विघन, शिव बाबा थोड़ा बाबा मुझे मदद करे। मांगते नहीं मांगते, बाबा तो कहते हैं आप अधिकारी हो, आपको मांगने की जरूरत नहीं है। राजयोग में हमें बाबा से मांगने की जरूरत नहीं है, हम तो माता पिता की संतान हैं और बाबा के सामने अपने दिल की बात रखी और उसी घड़ी उसका कई गुना फल बाबा हमें अनुभव कराता है। तो यहाँ रहम दिल हमें बनना है, बाबा के समान अन्य संसार की जो दुखी अशांत आत्माएं हैं उनके प्रति सबसे बड़ा रहम कौन सा है, जैसे बाबा ने हमें अपना बनाया और हमें दुख की दुनिया से सुख की दुनिया में ले आए, सुख के संसार में ले आए। हम ब्राह्मण संसार में आ गए तो कौन से संसार में आ गए, सुख के संसार में। हमें अपने वर्षे का अधिकारी बनाया, ऐसे ही वो आत्माएं भी बाबा का संदेश बाबा का ज्ञान प्राप्त करके बाबा के वर्षे के अधिकारी बने। और इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि संसार की कोई आत्मा वंचित ना रह जाए, वो कोई आपको उलाना ना दे कि भगवान आया भगवान आपको मिला, उसने आपको इतनी प्राप्ति कराई और आपने तो हमें बताया ही नहीं। तो हमारे मित्र संबंधी जो हैं, चलो हम बड़ी बड़ी सभाओं में भाषण नहीं कर सकते, पर कम से कम जो हमारे आसपास हमारे मित्र संबंधी हैं उन्हें तो हम बाबा का संदेश दे करके उन्हें अपना अनुभव सुना करके बाबा के समीप ला सकते हैं, ला सकते नहीं ला सकते। और दूसरा, जो भी हमारे ब्राह्मण परिवार की आत्माएं हैं, ब्राह्मण परिवार की आत्माओं का पुरुषार्थ तीव्र हो, उनकी स्व उन्नति हो, उसके प्रति उन्हें जो भी सहयोग की आवश्यकता है वो सहयोग उन्हें देना, सेवा करना, उसे बाबा कहता है ये है रहम रखना। और तीसरा है स्वयं के प्रति रहम हो हमारा। स्वयं के प्रति रहम क्या है, हम बाबा के ऊंच से ऊंच संतान हैं तो हमें बाबा के समान बनना है, देवता बनना है, तो जो मेरी कमियां हैं उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, यानी मेरा जो अनादि ओरिजिनल स्वरूप है, हमारे जो अनादि ओरिजिनल गुण है, उन गुणों को प्राप्त करने में जो कमी है उन कमियों को हम दूर करें, ये है अपने प्रति रहम करना। और बाबा उसमें तीन कमियां खास बताते हैं, जो 90% हमारे पुरुषार्थ में विघ्न डालती हैं, वो है अलबेलापन, ईर्ष्या और घृणा। ये तीन बातें जो हैं वो ज्यादा आती हैं, और इन्हें इन तीन को हम दूर कर लें। ब्राह्मण जीवन में जो भी पुरुषार्थ में अलबेलापन है, चाहे वो अमृत वेले में है, चाहे वो मुरली सुनने में है, चाहे वो सारे दिन की हमारी जो धारणाएं हैं उन धारणाओं को करने में है। और दूसरा, दूसरों के प्रति जब हम तुलना करते हैं, आपस में एक दूसरे के संगठन में आते हैं, सेवा में आते हैं, तब थोड़ा हम ईर्ष्या भाव या घृणा भाव में आ जाते हैं। तो इन तीन कमियों को पूरी तरह से समाप्त करना, उसको बाबा कहते हैं यथार्थ रहम भाव। यथार्थ रहम भाव दूसरे के प्रति भी और स्वयं के प्रति भी। और अगर साधारण रहम भाव है, बाबा कहता है, तो फिर हम प्रभावित हो जाते हैं। माना दूसरों के प्रति हमने करना शुरू किया, तो कहीं ना कहीं उनके गुणों पर, उनकी सेवा पर, उनके सहयोग पर प्रभावित हो जाएंगे। मुझे याद है ज्ञान काल में हमने एक फिल्म की कहानी सुनी थी कि एक मानसिक रोगी था। वो मानसिक रोगी के लिए एक नर्स को लाया गया। नर्स होते हैं जैसे संभाल करने के लिए। तो क्योंकि उस नर्स में वो योग्यता थी कि कैसा भी मरीज हो वो उसकी सेवा करके उसे ठीक कर देती थी, तो इसलिए उस खास नर्स को उसकी सेवा पर रखा गया। और वो बहुत रहम दिल थी, मतलब सेवा के समय बहुत प्रेम से, बहुत स्नेह भाव से सेवा करना। तो वो उसने करना शुरू किया, लंबे समय तक वो सेवा की, तो वो मरीज ठीक हो गया। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ, वो उसके लगाव में आ गई, और बाद में वो मरीज को भी उससे लगाव हुआ। और असर क्या हुआ उसका कि उसको तो ठीक कर दिया उसने, वो खुद पागल हो गई, वो पागलपन का दौरा उस पर आ गया। तो ये है प्रभावित होना। बाबा कहता है कि ऐसा रहम दिल नहीं, लेकिन यथार्थ रहम दिल माना हमारा तन मन धन, यानी मन बुद्धि हमने बाबा को समर्पण की है, तो फिर ये मन बुद्धि किसी आत्मा पर प्रभावित नहीं हो सकती। बाबा को अर्पण की है तो अगर किसी पर प्रभावित हो गई, किसी मनुष्य पर प्रभावित हो गई, तो इसका मतलब बाबा की अमानत में खयानत। तो कई बार बाबा पूछते हैं आपने पूरी बुद्धि समर्पण की है या आधी की है, थोड़ा थोड़ा दूसरा और थोड़ा थोड़ा बाबा, आधे का मतलब तो यही हुआ ना। तो कभी भी किसी भी आत्मा के सहयोग पर, सेवा पर, गुणों पर, ज्ञान के स्पष्टीकरण पर, इन सब पर प्रभावित नहीं होना। बाबा को देखो, ये देने वाला दाता कौन, किसने दिया ये गुण, किसने दिए ये सेवा करने की अकल भी किसने दी। आज हम सब सेवा करते हैं, किसने हमारे अंदर ये सेवा का गुण भरा, किसने भरा, किसने सिखाया हमें सेवा करना, बाबा ने सिखाया ना, वो योग्यता तो हमें बाबा से आई ना। तो जो भी आत्माएं कर रही हैं वो सब भगवान की देन है। तो कभी भी किसी के कोई गुण अच्छे लगते हैं, कोई विशेषताएं अच्छी लगती हैं, बाबा को सामने लाओ। हमें ऐसा बनना है वो है जरूर, लेकिन देने वाला दाता शिव बाबा है, तब हम यथार्थ रहम दिल होंगे। अपने ऊपर भी प्रभावित नहीं होना। कई बार लोग अपनी बुद्धि पर, अपने गुणों पर, हाँ मेरे जैसी सेवा कोई नहीं कर सकता, मैं फलाना हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं प्लानिंग बुद्धि हूँ, मैं इन्वेंटर बुद्धि हूँ, होते हैं बहुत आत्माओं में बहुत विशेषताएं, योग्यताएं, कलाएं होती भी हैं। बाबा के बच्चे भी कई बहुत विशेष बच्चे हैं। तो बाबा कहता है अपने ऊपर भी प्रभावित नहीं होना। तो ये है यथार्थ रहम करना, तब हमारी स्व उन्नति और पुरुषार्थ की तीव्र गति होती है। तो ये थे बाबा की शिक्षाओं को हम स्वरूप में लाएं, और सभी के प्रति, स्वयं के प्रति हम क्षमाशील और यथार्थ रहम दिल बने। ओम शांति।
ये तन मन भी आंख ना भुला। सुहाने पल है जिंदगी की।